एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है, ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, जरा सोचिए, अगर सदियों से चली आ रही हमारी सबसे गहरी मान्यताओं पर जमीन ही मतलब पैरों तले से खिसक जाए तो क्या होगा? अगर वो चीजें जिन पर हमारा समाज, हमारी नैतिकता, टिकी है, अचानक खोखली लगने लगे। एक विचारक ने 100 साल से भी पहले इसी बेचैनी को महसूस किया और कहा, ईश्वर मर चुका है। और ये कोई जश्न का ऐलान नहीं था, बल्कि एक निदान था, एक तरह की चेतावनी। आज के ज्ञान गोष्ठी में हम उसी विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं, फ्रेडरिक विलहेल्म नीचे, एक जर्मन दार्शनिक, जन्म 1844, मृत्यु 1900, जिनकी सोच ने पश्चिमी दर्शन की दिशा ही बदल दी। हमारा मकसद है नीचे के जीवन, उनके आप कह सकते हैं चौंकाने वाले विचारों और उनकी जो विवादित विरासत है उसको समझना, और इसके लिए हमने उनके जीवन और दर्शन से जुड़े कुछ अहम दस्तावेजों को देखा है।
हाँ, और नीचे को सिर्फ दार्शनिक कहना शायद अधूरा होगा। वो खुद को संस्कृति का चिकित्सक मानते थे। एक तरह से उन्होंने 19वीं सदी के यूरोप की नब्ज पकड़ी थी, जब पुरानी धार्मिक और नैतिक व्यवस्थाएं वो चरमरा रही थी और एक खालीपन, एक अर्थहीनता का भाव फैल रहा था, जिसे उन्होंने शून्यवाद कहा, निहिलिज्म।
अच्छा, शून्यवाद, यानी वो उस समय की हवा को महसूस कर रहे थे। कैसा था वो दौर, मतलब जब नीचे सोच रहे थे, लिख रहे थे, यूरोप में क्या चल रहा था?
देखिए, वो दौर जबरदस्त उथल पुथल का था। एक तरफ तो विज्ञान, खासकर डार्विन का विकासवाद, उसने ईश्वर और धर्म की जो पारंपरिक सत्ता थी उसको चुनौती दे दी थी। दूसरी तरफ राष्ट्रवाद जोर पकड़ रहा था, जैसे 1871 में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र बना, औद्योगिकरण समाज को बदल रहा था, पुराने मूल्य टूट रहे थे और एक नई, कह सकते हैं, आधुनिक दुनिया बन रही थी।
और बौद्धिक माहौल कैसा था उस वक्त, किन विचारकों का उन पर असर पड़ा?
दो नाम खास तौर पर लिए जाते हैं। एक तो दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर, जिनकी निराशावाद ने उन्हें शुरू में काफी प्रभावित किया, और दूसरे संगीतकार रिचर्ड वैगनर। उनसे तो उनकी गहरी दोस्ती थी, जो बाद में खैर तीखी दुश्मनी में बदल गई। तो नीचे का दर्शन इसी माहौल, इसी उथल पुथल के बीच पनपा। उन्होंने देखा कि यूरोप ने मतलब ईश्वर पर यकीन तो खो दिया, लेकिन उसकी जगह कोई नया अर्थ या मूल्य नहीं खोज पाया, और यही बीमारी, यही खालीपन उनके दर्शन का केंद्र बन गया।
ये बड़ी दिलचस्प बात है कि एक पादरी के बेटे ने ईश्वर की मृत्यु का ऐलान किया। उनके अपने जीवन में उनकी परवरिश ने इस सोच को कैसे गढ़ा होगा?
हाँ, उनका शुरुआती जीवन काफी विरोधाभासों से भरा था। पिता लूथरन पादरी थे, लेकिन उनकी मृत्यु तब हो गई जब नीचे सिर्फ 4 साल के थे। पढ़ाई में वे बचपन से ही बहुत तेज थे, खासकर प्राचीन भाषाओं में, साहित्य में। बॉन और लाइप्सिग विश्वविद्यालयों से पढ़े,
और फिर सुना है बहुत ही कम उम्र में प्रोफेसर बन गए थे।
हाँ, ये बिल्कुल असाधारण बात थी। महज 24 साल की उम्र में स्विट्जरलैंड के बेसल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। लेकिन फिर किस्मत देखिए, भयानक सिरदर्द, कमजोर नजर, पेट की गंभीर बीमारियां, इन सब ने उन्हें सिर्फ 34 की उम्र में 1879 में रिटायर होने पर मजबूर कर दिया।
पर शायद यही एकांतवास, ये अकादमिक जगत से दूरी उनके सबसे मौलिक विचारों के जन्म के लिए जरूरी थी।
बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद के जो 10 साल थे 1879 से 1889 तक, वो उनके सबसे रचनात्मक साल थे। वे एक आजाद विचारक की तरह इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस में घूमते रहे, लिखते रहे। सिल्स मारिया की पहाड़ियों में कहते हैं उन्हें अपनी सबसे प्रसिद्ध किताब द स्पोक जरथुस्त्र का विचार आया, प्रेरणा मिली। लेकिन फिर 1889 में ट्यूरिन, इटली में, उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया, और जीवन के आखिरी 11 साल उन्होंने लगभग खामोशी और मानसिक अक्षमता में गुजारे। उनकी कई किताबें मशहूर हैं, लेकिन कुछ तो मतलब मील का पत्थर मानी जाती हैं। क्या आप संक्षेप में उनके मुख्य विचारों को छू सकती हैं, जैसे द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी से शुरू करें?
जरूर। द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 में उन्होंने दो, आप कह सकती हैं, विरोधी यूनानी शक्तियों की बात की, अपोलिनियन और डायोनीशियन। और अपोलिनियन यानी तर्क, व्यवस्था, संतुलन का प्रतीक, और डायोनीशियन यानी उन्माद, अराजकता, जुनून। नीचे ने कहा कि महान यूनानी कला, खासकर ट्रेजेडी, इन दोनों के तनावपूर्ण संतुलन से ही पैदा हुई थी। ये उनके बाद के विचारों की एक तरह से नींव थी कि जीवन सिर्फ तर्क और व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसमें जुनून और अराजकता का सामना करना भी शामिल है। और दस पोक जरथुस्त्रा, वो तो बिल्कुल अलग अंदाज में लिखी गई है, सुना है?
हाँ, वो एक दार्शनिक उपन्यास जैसा है, बहुत काव्यात्मक, भविष्यदर्शी। इसमें जरथुस्त्र नाम का एक पात्र है जो पहाड़ों से उतर के लोगों को नए मूल्य सिखाता है, और यहीं पर ईश्वर की मृत्यु, ऊबरमांस जिसे ओवरमैन या अतिमानव कहते हैं, सत्ता की इच्छा यानी विल टू पावर, और शाश्वत पुनरावृत्ति यानी इटर्नल रिकरेंस जैसे उनके विस्फोटक विचार सामने आते हैं।
हाँ, ये सारे शब्द ऊबरमेंच, विल टू पावर, इटर्नल रिकरेंस सुनने में बड़े भारी लगते हैं। थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगी कि नीचे का असल मतलब क्या था इनसे। चलिए ईश्वर की मृत्यु से शुरू करते हैं।
देखिए, जैसा पहले कहा, ईश्वर की मृत्यु का मतलब ये नहीं था कि कोई भगवान था और वो सचमुच मर गया। इसका मतलब था कि आधुनिक विज्ञान और सोच ने, खासकर प्रबोधन काल ने, ईश्वर को जीवन के केंद्र से हटा दिया है। हमारी संस्कृति की नींव हिल गई है। अब मनुष्य को बिना किसी दिव्य सहारे के, मतलब खुद ही अपने जीवन का अर्थ और मूल्य गढ़ना होगा। ये एक भयानक आज़ादी थी, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी।
सही कहा। और ये सत्ता की इच्छा या विल टू पावर, ये सुनने में थोड़ा थोड़ा नकारात्मक सा लगता है, जैसे सिर्फ ताकत हासिल करने की होड़।
हाँ, ये गलतफहमी बहुत आम है, और सच कहूँ तो इसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। लेकिन नीचे के लिए ये सिर्फ राजनीतिक शक्ति या दूसरों पर हावी होना नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बुनियादी चीज थी। ये जीवन की, आप कह सकती हैं, मौलिक ऊर्जा है। हर चीज में बढ़ने की, फैलने की, खुद को अभिव्यक्त करने की और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की एक अंदरूनी जिद या ड्राइव। जैसे एक कलाकार का अपनी कला में डूब जाना, एक वैज्ञानिक का सच खोजना, यहां तक कि एक पौधे का धूप की ओर बढ़ना। नीचे के अनुसार ये सब सत्ता की इच्छा के ही अलग अलग रूप हैं। ये दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने की इच्छा है।
अच्छा, तो फिर यूबरमैंच या ओवरमैन कौन है? क्या ये कोई कोई सुपर हीरो टाइप का कॉन्सेप्ट है?
नहीं, सुपर हीरो बिल्कुल नहीं। देखिए, ऊबरमैंच वो इंसान है जो ईश्वर के मृत्यु के बाद जो शून्य पैदा हुआ है उसे भर सकता है। वो पारंपरिक अच्छे और बुरे की धारणाओं से ऊपर उठता है और अपने खुद के मूल्य बनाता है, अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करता है। वो जीवन की हर सच्चाई को, सुख दुख संघर्ष, मतलब पूरी तरह स्वीकार करता है और उसे जी भर के जीता है। वो भेड़ चाल चलने वाला नहीं, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने वाला है। ये एक आदर्श है, एक लक्ष्य है मानवता के लिए, नीचे के अनुसार।
और शाश्वत पुनरावृत्ति, इटर्नल रिकरेंस, ये विचार तो और भी अजीब लगता है। मतलब एक ही जिंदगी बार बार जीना।
हाँ, ये एक बहुत ही गहरा मानसिक प्रयोग है, एक तरह की कसौटी। नीचे पूछते हैं कि आप अपनी इसी जिंदगी को बिल्कुल इसी तरह, हर छोटी बड़ी घटना, हर सुख दुख के साथ अनंत काल तक बार बार जीने के लिए तैयार हैं, बिना कुछ बदले? अगर आपका जवाब जोरदार हाँ है, तो इसका मतलब है कि आपने जीवन को उसकी समग्रता में, उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर लिया है, बिना किसी शर्त के। इसे वो एमोर फटी कहते थे, भाग्य से प्रेम। और उनके अनुसार केवल ओबरमैंश ही ऐसा जोरदार हाँ कह सकता है। यही जीवन की सबसे बड़ी पुष्टि है।
वाह, इन विचारों ने तो वाकई पश्चिमी सोच की जड़ें हिला दी होंगी, अगर हम प्लेटो या कांट जैसे स्थापित दार्शनिकों से उनकी तुलना करें तो।
हाँ, वो प्लेटो के बिल्कुल उलट थे। प्लेटो ने एक असली दुनिया, मतलब विचारों की दुनिया की बात की, और इस भौतिक दुनिया को कमतर बताया, एक छाया की तरह। नीचे ने कहा, नहीं, यही दुनिया असली है, यही एकमात्र दुनिया है, और हमें इसी से प्यार करना सीखना होगा, इसकी हर चीज से। इसी तरह कांट ने सार्वभौमिक नैतिक नियमों की बात की, जो सबके लिए एक जैसे हों, हमेशा लागू हों। नीचे ने कहा कि नैतिकता हमेशा सापेक्ष होती है, वो शक्ति संबंधों और नजरिए से तय होती है, जिसे उन्होंने पर्सपेक्टिविज्म कहा, मतलब कोई एक ऊपर से आई हुई या हमेशा के लिए सही नैतिकता नहीं है।
और इसी से जुड़ा उनका वो स्वामी दास नैतिकता यानी मास्टर स्लेव मोरालिटी का विचार भी है ना? वो क्या था?
हाँ बिल्कुल, अपनी किताब ऑन द जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी 1887 में वे पड़ताल करते हैं कि हमारी जो अच्छाई और बुराई की धारणाएं हैं, ये आई कहां से। उनका तर्क था कि दो तरह की नैतिकताएं इतिहास में उभरी हैं। एक है स्वामी नैतिकता, जो शक्तिशाली कुलीन वर्ग से आती है। इसमें ताकत, गर्व, रचनात्मकता, महत्वाकांक्षा जैसे गुण अच्छे माने जाते हैं। और दूसरी है दास नैतिकता, जो कमजोर उत्पीड़ित वर्ग से आती है। इसमें विनम्रता, दया, धैर्य, सहानुभूति अच्छे गुण माने जाते हैं, क्योंकि ये उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी थे। नीचे का मानना था, और ये बहुत विवादास्पद था, कि पश्चिमी सभ्यता, खासकर ईसाई धर्म, इसी दास नैतिकता पर आधारित है, जिसने मूल कुलीन मूल्यों को उलट दिया है, कमजोर बना दिया है।
और यहीं से शायद उनकी विरासत का जो विवाद है वो शुरू होता है, खासकर नाजीवाद के साथ उनका नाम कैसे जुड़ गया, ये मतलब ये बहुत हैरान करने वाली बात लगती है।
हाँ, ये नीचे की विरासत का सबसे दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है। उनके मानसिक पतन के बाद उनकी बहन थी एलिजाबेथ फॉस्टर नीचे, वो खुद यहूदी विरोधी थी और कट्टर जर्मन राष्ट्रवादी भी। उन्होंने नीचे की अधूरी पांडुलिपियों और नोट्स पर कब्जा कर लिया।
और फिर उन्होंने उन नोट्स के साथ क्या किया?
उन्होंने नीचे के विचारों को, खासकर सत्ता की इच्छा और उबरमेंश जैसे कॉन्सेप्ट्स को, जानबूझकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने एक किताब द विल टू पावर नाम से प्रकाशित की, जो असल में नीचे के बिखरे हुए नोट्स का एक संकलन था, जिसे उन्होंने अपनी विचारधारा के हिसाब से चुना और संपादित किया। उसे इस तरह पेश किया गया कि जैसे वो फांसीवादी और नस्लवादी विचारधारा का समर्थन करते हों। बाद में नाजियों ने इन्हीं तोड़ मड़ोकर पेश किए गए विचारों का, आप सोच सकती हैं, कितना भयानक इस्तेमाल किया अपनी नस्लीय नीतियों को सही ठहराने के लिए। ये नीचे के मूल व्यक्तिवादी और जीवन पुष्टि वाले दर्शन का घोर अपमान था।
लेकिन क्या नीचे के अपने लेखन में ही कुछ ऐसा था जिसने इस तरह की गलत व्याख्या को मतलब संभव बनाया, या ये पूरी तरह से उनकी बहन का ही दोष था?
ये एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल है। देखिए, एलिजाबेथ का दोष तो बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी सच है कि नीचे की भाषा अक्सर भड़काऊ होती थी, अभिजाती होती थी, और कभी कभी हाँ, क्रूरता की हद तक स्पष्टवादी। कमजोरी और दया की उनकी जो आलोचना थी, उसने ऐसे दुरुपयोग का रास्ता शायद थोड़ा आसान कर दिया, भले ही उनका इरादा वो बिल्कुल ना रहा हो। बाद में द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वॉल्टर कॉफमैन जैसे विद्वानों ने बहुत मेहनत की नीचे की प्रतिष्ठा को साफ करने में। उन्होंने दिखाया कि नीचे असल में राष्ट्रवाद और यहूदी विरोध के कितने सख्त खिलाफ थे। आज उन्हें एक बहुत ही दूरदर्शी सांस्कृतिक आलोचक माना जाता है, एक भविष्यवक्ता की तरह।
हाँ।
शक्ति, पहचान और अर्थ की तलाश पर उनके जो विचार हैं, वो आज की दुनिया में जहाँ पारंपरिक सहारे कमजोर पड़ गए हैं, शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं।
नीचे के कुछ कथन तो बहुत ही मशहूर हो गए हैं, लगभग कहावतों की तरह। क्या हम कुछ पर बात कर सकते हैं, जैसे वो वाला जो हमें मार नहीं डालता वो हमें मजबूत बनाता है?
हाँ, ये ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स 1889 से है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि उनके अमर फाती यानी भाग्य से प्रेम के दर्शन का सार है। उनका मानना था कि जीवन में मुश्किलें और दर्द तो आएंगे ही, उनसे बचने की कोशिश बेकार है। असली ताकत इन मुश्किलों का सामना करने में है, उनसे सीखने में है, और पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उभरने में है। दुख को विकास का हिस्सा मानना।
एक और है जो थोड़ा डरावना सा लगता है, यदि तुम लंबे समय तक किसी अथाह गड्ढे में झांकते हो तो वो अथाह गड्ढा भी तुम में झांकने लगता है। ये बियॉन्ड गुड एंड ईविल से है शायद।
हाँ, वहीं से है। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक चेतावनी है, खासकर जब आप शून्यवाद, अर्थहीनता या इंसान की फितरत के जो अंधेरे कोने हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, तो खतरा यह है कि आप खुद उस अंधेरे में खो सकते हैं, उसी का हिस्सा बन सकते हैं। मतलब बुराई को या नकारात्मकता को समझने की कोशिश में खुद उससे प्रभावित हो जाने का डर।
और वो रचनात्मकता वाला, तुम्हारे भीतर अराजकता होनी चाहिए ताकि तुम एक नाचते हुए तारे को जन्म दे सको, ये दस स्पोक जरथूस्र में था।
हाँ, ये जरथूस्र में है। ये नीचे के उस डायोनीसियन पक्ष को दिखाता है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। उनका मानना था कि सच्ची रचनात्मकता, कुछ नया और मौलिक रचने की जो क्षमता है, वो अक्सर अंदरूनी उथल पुथल से, पुरानी चीजों के टूटने से और एक कसम की हाँ, अराजकता से ही पैदा होती है।
सिर्फ बनी बनाई व्यवस्थित चीजों में रहकर आप कुछ महान या नया नहीं रच सकते,
उसके लिए थोड़ा थोड़ा केओस जरूरी है।
नाजीवाद वाले विवाद के अलावा उनके दर्शन की और क्या आलोचनाएं होती हैं, मतलब अकेडेमिक स्तर पर या वैसे भी?
कई हैं, उन पर अक्सर अभिजात्यवादी, एलिटिस्ट होने का आरोप लगता है, लोकतंत्र का विरोध करने का और कमजोरों के प्रति सहानुभूति न रखने का। कुछ आलोचक कहते हैं कि उनके विचार नैतिक सापेक्षवाद, मॉरल रिलेटिविज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, मतलब कि फिर तो कुछ भी सही या गलत नहीं रह जाता, सब जायज लगने लगता है। और उनकी जो लिखने की शैली है, जो सूत्रों या कहावतों जैसी एफोरिस्टिक है, वो बहुत शक्तिशाली तो है पर कई बार अस्पष्ट भी हो सकती है, जिससे अलग अलग यहां तक कि विरोधी मतलब भी निकाले जा सकते हैं।
क्या नीचे के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से या कम ज्ञात बातें भी हैं?
हाँ, कुछ हैं। एक तो वो क्यूरन के घोड़े वाला किस्सा बहुत मशहूर है, हालांकि ये पक्का नहीं है कि वो सच है या नहीं। कहते हैं कि उनके मानसिक पतन से ठीक पहले उन्होंने कोचवान को सड़क पर घोड़े को बुरी तरह पीटते देखा। वे दौड़कर गए, घोड़े को गले लगा लिया और वहीं बेहोश हो गए और फिर कभी पूरी तरह होश में नहीं आए।
ओह, और उनकी मूछें, वो तो उनकी पहचान ही बन गई।
हाँ, उनकी वो घनी मूछें, कहा जाता है कि वे उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, बड़े करीने से संवारते थे, लगभग जुनून की हद तक। वे एक अच्छा पियानो वादक भी थे और उन्होंने कुछ संगीत रचनाएं भी की। वैगनर से दोस्ती की एक वजह संगीत भी थी। और ये भी दिलचस्प है कि वे मौसम को लेकर बहुत संवेदनशील थे, हमेशा अच्छी जलवायु की तलाश में यूरोप में घूमते रहते थे। मानते थे कि मौसम उनकी सोच और लिखने को सीधे तौर पर प्रभावित करता है।
तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो नीचे का महत्व क्या है, उन्हें आज क्यों पढ़ा और समझा जाना चाहिए?
देखिए, एक नीचे एक विस्फोटक, एक क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने हमें हमारे आरामदेह यकीनों से जगाया, हमारी नैतिकता, हमारे सत्य की धारणाओं की नींव पर सवाल उठाए और पूछा कि क्या हम बिना किसी बाहरी सहारे के, बिना ईश्वर या किसी परम सत्य के, खुद अपने जीवन का अर्थ रचने का साहस रखते हैं। उन्होंने ईश्वर की मृत्यु से पैदा हुए उस शून्य को पहचाना, उस शून्यवाद को, और हमें ऊबरमेंच बनने की चुनौती दी, यानी अपनी नियति खुद गढ़ने वाले, जीवन को उसकी पूरी तीव्रता, उसके सुख दुख के साथ जीने वाला इंसान बनने की। हाँ, उनकी विरासत जटिल है, उनके विचारों का खतरनाक इस्तेमाल भी हुआ है, ये सच है, लेकिन उनकी असली ताकत है हमें सोचने पर मजबूर करना, हमें भेड़चाल से अलग अपनी राह बनाने के लिए उकसाना, और साहस, आत्मज्ञान और बौद्धिक ईमानदारी जैसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करना। वो हमें दिखाते हैं कि बिना आसान जवाबों वाली इस दुनिया में कैसे जिया जाए, पूरी हिम्मत के साथ।
तो जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। नीचे ने कहा था कि हमें अपने मूल्य खुद बनाने होंगे। आज की इस दुनिया में जहां जानकारी का सैलाब है, सोशल मीडिया का इतना दबाव है, तरह तरह की विचारधाराएं हैं, क्या ये काम और भी मुश्किल हो गया है या शायद और भी जरूरी हो गया है? और सोचिए, अगर नीचे आज होते तो वे किन आधुनिक मूर्तियों पर, किन आइडल्स पर अपना हथौड़ा चलाते?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है एकत्र फाउंडेशन द्वारा।